شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن، اور کوئی بھی نام دے دیجئے، لیکن وہ سفر جس میں ہم ان تکلیفوں اور پریشانیوں کا علاج دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے بھی بیزار آ چکے. آج اس کا ڈے 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس موقع کی قدر کی. اللہ تعالیٰ سے آگے بھی توفیق ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. ہم اس موضوع کے اندر وہ تمام چیزیں پڑھتے جائیں گے جو ایک ایک کر کے راستے کے وہ ہرڈلز اور راستے کی ان رکاوٹوں کی صورت میں دکھوں کے وہ سارے مواقع جن کو ایک سائٹ پہ کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزار سکے، تو اسی میں سے آج کا دن ہے. غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ہر دن کی طرح ہم آج بھی ایک آیت دیکھیں گے کہ جس میں ہمیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی ٹپس ملتی جائیں گی. اور آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ 262. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. سورۃ البقرہ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے کے خرچ کی صورت میں بہترین طور پر پیش کیا گیا. اور یہاں جو فائدہ ہمیں دکھتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا، وہ کیا ہے کہ ایک تو بات ہے کہ خرچ کریں تو اللہ کے راستے میں کریں. مال کا تعلق صرف روپے، پیسے، ڈالرز اور پاؤنڈز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مما رزقناہم ینفقون کی صورت میں ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی، ہر وہ سکل، وہ خوبی جو اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں صرف مال نہیں مراد، ورنہ تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو مال پہلے ہی پورا پورا، ہم وہ کیسے دیں اور غموں سے آزاد ہو جائیں. تو یاد رکھیے، آپ کا اپنا، آپ کی زندگی، آپ کا وقت، آپ کی سکلز، رشتے ناتے، گھر، اولاد، بچے، یہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور انسانوں میں سے اکثریت انہی کے غموں میں کھو کے اللہ کے راستے کے کام چھوڑ دیتی ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح اس کام کا حصہ بن جائیں اور اس کے بعد نہ تو تکلیف دیں نہ ایزا دیں. کسی کو مال دیتے ہیں تو مال دے کے جتلائے نہیں. اللہ کے راستے میں اگر کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اس وقت کو لگانے کے بعد خود پہ اور دوسروں پہ رحم نہ کھاتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رنج اور خوف نہیں ہوگا. تو ٹینشن فری زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے سارے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. سارا کر سکیں تو یہ بھی تھوڑا ہے، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. حقیقت ہے کہ آپ کی میری بلانگنگز، جو کچھ بھی آپ میں اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، موجود ہیں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اگر ہم یہ سب کچھ بھی لوٹا دیں تو کوئی بڑی بات تو ہم نے نہیں کی. یہ تو اللہ کی رحمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے اوپر کی، اور ہم اس کو استعمال کرتے گئے. لیکن حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. اللہ کے راستے کی چیزیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی اور دنیا بڑھانے کا ذریعہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے بندوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. یہی ہیں وہ لوگ جو پھر نعمتوں کو پا کر بھی خوشی نہیں رہتے. آج بھی بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اولاد بھی ہے ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے. گھر بھی بڑا ہے، گاڑی بھی بڑی ہے، نوکر چاکر، جو دنیاوی چیزیں انسان کی ٹھنڈک کی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب کچھ اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم دینے والے ہی کے نام پر نہیں دے پاتے. اور اگر کبھی دینا بھی پڑے تو پھر اللہ معاف کرے جو ہمارے دینے کے انداز ہوتے ہیں، अल्लाह ताला हमें उससे बचा के रखे। कितनी ही वो चीजें जो सिर्फ अल्लाह ने इसलिए हमें जरूरत से ज्यादा दी थी कि दूसरों के साथ शेयर करें, हम दूसरों के साथ शेयर ना करने का एक जुर्म करते हैं, फिर उसको रखने संभालने ये वो कर करा के फिर कहते वक्त नहीं मिलता। यानी वही चीजें जो दूसरों को दे देते तो वक्त बहुत सा मिल जाता। हमें से अक्सर लोग उन्हीं को फिर और मल्टीप्लाई करने के जुर्म का शिकार है। अगर इस पे बाद में आप गौर करें ना तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो आज इंसानों में से अक्सरियत से सरजद हो रहा है। और वो क्या है कि हम अल्लाह की नेमतों को दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय हम उन सारी नेमतों को मजीद नेमतें पाने का जरिया बनाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जरा सा अपना बोझ हल्का करो फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो आज मैंने आपने इस टिप पे गौर करना है, क्या चीजें मेरी जिंदगी में ऐसी हैं कि मेरा उसके बगैर गुजारा हो सकता है। और ये लॉकडाउन ने तो बहुत सारी चीजें आपको भी सुझा दी होंगी कि खामखा इनके गुलाम थे। देखिए चीजें हमारी गुलाम है, हम उनके गुलाम नहीं। ये तुम्हारी खिदमत गुजार है ना, बस कपड़े खिदमत करते हैं, हमारे नौकर हैं, ये हमारे हेल्पर्स हैं, गर्मी सर्दी से बचाते हैं। इसी तरह खुशी गमी के मौके पे ये लिबास हमारे जज्बात का इजहार होता। लेकिन क्या आप सिर्फ इन्हीं कपड़ों को समेटते रह गए और आपका आधा दिन चला गया? सिर्फ इन्हीं को मजीद लेने और सजाने के लिए बाजारों के चक्कर खाए और कई नमाजें चली गई? तो ये एक आज का बहुत बड़ा मसला है। हल मिम मजीद, हल मिम मजीद, कुछ और भी है तो वो भी दे दीजिए, कुछ और भी है तो वो भी दे दीजिए। और अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमको कसरत की हवस ने इतना गाफिल कर दिया कि तुम तो कब्रों तक पहुंच गए। आज तो मुर्दों के दफनाने पे भी फख्र है, किसका मुर्दा किधर, कौन मियानी शाह में दफन होगा और कौन डिफेंस क्लिफ्टन के किसी बड़े आला कब्रिस्तान में दफन होगा, किसके मरने पे कौन आया, किसने दर्स दिया, किसने नमाज पढ़ाई। आज तो हम इस हद तक बिगड़ गए तो फिर खुशियां कहाँ होंगी। एक नई सोच के साथ आगे चलेंगे कि आज के बाद मैंने अपनी जिंदगी में से हर वो चीज निकाल देनी है और उसको दे देनी है जिसकी वो जरूरत होगी, मेरी तो वो सिर्फ ख्वाहिश थी। देखिए अल्लाह ताला हमारी नीड्स को पूरा करते हैं तो हम वांट्स पे आ जाते हैं, यानी अल्लाह ताला जरूरियात पूरी करते हैं तो हम ख्वाहिशात पे आ जाते हैं। और ये विशेष सर्कल हमें दुखी रखता है। तो गमों के दुखों के तकलीफों के इस बोझ को दूर करने की आज की टिप जो इस आयत में आपको मुझे मिल गई, दे दीजिए और फिर भूल जाइए। ना मन ना अजा, किसी गरीब को दिया तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना कीजिए, और अल्लाह के दीन के लिए वक्त लगा दिया तो इसको बोझ ना समझिए। पिछले सबक का खुलासा देखें तो हमने जो टिप्स देखी थी उसमें एक थी कि किसी के शुक्रिया का इंतजार ना करें क्योंकि वो है ना शाकिर अलीमा, और जो अल्लाह ताला किसी काम के करने पे आपको मुझे देता है कोई और दे नहीं सकता। हद तक कि आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं ना, एक माँ होने के नाते, बहन होने, बीवी होने, बेटी होने के नाते कभी एहसान ना जुटला है। बस मैं अपने बच्चों पे एहसान चलाती हैं, हमने ये किया वो किया, मर्दों को तो कमी देखा है लेकिन होंगे कुछ ऐसे जरूर कि जो एहसान जुटलाएं, सुबह से काम किया, इतनी मेहनत से कमा के लाता हूँ। आज के बाद अपने बच्चों से भी शुक्रिया का इंतजार ना करें। लाशोर में छुपी भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है, अच्छा बड़े होंगे तो हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, और इसी तरह से हम कुछ चीजें उनके साथ शेयर करते हैं। आज के बाद बीवी होने के नाते या माँ होने के नाते जहां जो किसी के साथ नेकी करें वो अल्लाह ताला के नाम पे जोड़ दीजिए, इसलिए कि बाकी से मोहब्बत आपको भी बका की तरफ ले जाएगी। अगर आपने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दिया तो आप देखिएगा कि आपके जाने के बाद आपकी औलादे ही नहीं और बहुत सारे लोग भी आपका नाम लेंगे। फिर दूसरी चीज थी दूसरों पर एहसान कीजिए, इंशराह हासिल होगा। रब्बिश्राहली की मांगी हुई दुआएं कबूल कब होती हैं? जब दूसरों के साथ एहसान के दर्जे पर रहें, और एहसान के दर्जे पर रहने के लिए इंसान को अल्लाह ताला के साथ इबादत का आसन दर्जा यानी कान्ना का तराह इस्तेमाल करना होगा। मारी बंदी नमाजें नहीं, आज भी आप देखिए अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं बस तईन बिस सबरी बस सला, तुम दुख और तकलीफ में नमाज से मदद तलब करो। हम कहते हैं फोकस ही नहीं होता, इधर से उधर और उधर से उधर घूमते रहते हैं और फिर नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन बेरुख नमाजें होती हैं। और इंसानों से जब मामला करते हैं तो बिल्कुल ही बराबरी की सतह पे, जैसा कोई करे वैसा कर दो। तो नहीं, आज के बाद एहसान की कैफियत रखनी है हमने, और यकीनन हम इस पे कोशिश कर रहे हैं पिछले लेसन से सुनने के बाद तक। और जब जिसने एहसान किया, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए फिर बहुत सारे रास्ते आसान भी कर देगा। फिर इसी तरह खाली ना बैठिए। खाली घर क्या है, जिसको कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। तो फालतू बैठना, बेकार बैठना, सिर्फ खबरें ही सुनते रहना और सभी कुछ कुछ इस तरह की कैफियत में रहना, ये इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई हवाई जहाज को फिजा में जाकर उसका इंजन बंद कर दे तो हलाकत लाजमी है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी दुनिया में जो अल्लाह की दी हुई जिंदगी की पूरी कदर नहीं करते। फिर इसी तरह अगली चीज हमने देखी थी कि नक्काल ना बने, क्योंकि हम मंकी नहीं हैं। अपनी अकल रखिए, अपनी समझ रखिए, और उसके बाद फिर कजा और कदर को माने बगैर चारा नहीं। जो अल्लाह ने आपके मेरे नसीब में लिख दिया है उसको लब्बई कहिए। रौदी तो बिल्लाही रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बी मोहम्मदन नबीयन। और फिर उसके बाद देखिए तो सही वो जिंदगी कितनी हसीन जिंदगी होगी। फिर इसी तरह से उसर के साथ युसर भी है। इस कुलिये को, इस जाब्ते को कभी ना भूलें। आज की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। आज सेहत है, कल बीमारी है। वक्त आएगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर लीमू से मीठा शरबत बनाइए। लीमू तो खट्टा होता है, मीठा शरबत कैसे बनाएंगे? उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें। तो हकीकत है कि जैसे कड़वी चाय में शक्कर की एक चम्मच चाय को मीठा करती है, इसी तरह शुक्र की एक चम्मच जिंदगी को मीठा करती है। तो आप अगर खट्टे मीठे लोगों के बीच में घिर भी चुके हैं तो भी फिक्र ना कीजिए, आपको अल्लाह ताला ने बहुत खूबियां दी हैं। आप उन खूबियों में रहते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतरीन रखिए। तो इस टिप का नाम आप ये भी रख सकते हैं कि रिश्तों को निभाइए। इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, चाहे वो ससुराली रिश्ते हैं या हमारे बच्चों के ससुराल हैं या वो हमारी बहुएं या सासें हैं, ये हमारी आजमाइश होती हैं। ये रिश्ते और खास तौर पे रिश्तों की आजमाइश हमारी तलवार को तेज करने के लिए आते हैं। अगर हम इनसे दूर दूर रहेंगे ना तो हम शार्प नहीं होंगे, खुंडे हो जाएंगे। तो इनके साथ रहिए, सब्र के साथ रहिए। एक दिन ये खुद भी आपकी गवाही देंगे कि आप अच्छे थे। आज हम जिस टिप से शुरू करेंगे वो है 14 नंबर की। 13 टिप्स हम कर चुके, तो 14 क्या है? परेशान हाल की पुकार कौन सुनता है? अब मैं युजीबुल मुस्तर इजादा हूँ। हकीकत यह है कि जिंदगी में दुख जब भी आते हैं तो इंसान को एक कंधा चाहिए होता है जिस पे अपना सर रख कर रो सके। खुशकिस्मत है वो जिनको उस जात का सहारा मिल जाए कि जो सिर्फ आपको सर रखने की जगह ही न दे बल्कि फिर आपको सर उठा के जीने का मौका दे। तो कौन है जो परेशान हाल पुकारे और मुसीबत सदा फरियाद करे? कायनात इसकी तरफ झुके, सारी मखलूक जिससे मांगे, जुबानों पर इसका जिक्र हो, दिलों में वो घर करे, वो है अल्लाह और सिर्फ अल्लाह। फिर याद कीजिए पहली टिप को, या अल्लाह या अल्लाह। हम पर और आप पर, यानी हम पर आप सब पर ये फर्ज है कि आसानी हो के तुरशी, सख्ती हो के तंगी, उसमें अल्लाह को पुकारें, इसी के सामने गिड़गिड़ाएं, इसी का वसीला चाहें, किसी की चौखट पर सर झुकाएं, रोएं मांगें और उसी के हो जाएं। उस वक्त उसकी मदद आएगी, फिर नुसरत के दरवाजे खुलेंगे। वो खुद कहता है, मैं युजीबुल मुस्तर इजादा हूँ। इसके अलावा कौन है जो मुसीबत ज़दा की पुकार सुने? तो डूबते को बचाए, गायब को लौटाए, मुबतला को निजात दे, मजलूम की मदद करे, गुमराह को हिदायत दे, मरीज को शिफा दे, मजलूम को आसानी फराहम करे। और वो तो खुद कहता है कि जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, इताअत को इसके लिए खालिस करते हुए। यहाँ हम वो दुआएं तो नहीं दोहराएंगे जिनमें हुस्न मलाल और रंजो फिक्र को दूर करने की दुआ की गई। हदीस की किताबों में ऐसी बहुत सारी दुआएं, और आगे जाकर हम एक टॉपिक पूरा दुआओं का करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त बस आप सीखिए, ये टिप्स हैं। इस वक्त हम कोई तफसीर नहीं कर रहे। इस वक्त हमने जिस चीज को लेना है वो क्या है? अल्लाह से बातें करना सीखें, इससे सरगोशी करें, इससे दुआ करें, इसे पुकारें, इसी से उम्मीद करें, इसे आप पा जाएं तो हर चीज को पा जाएंगे। लिखिए, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जिसको रब जो मिल गया तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए कि एक औरत शादी होकर एक मर्द के घर में आती है तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसी का नहीं हो जाता, वो गाड़ी की चाबी हो या फिर वो चेकबुक हो। तो ये तो एक हस्बैंड, एक शौहर जिसकी ज्यादा से ज्यादा हम पर क्या नजर होगी। तो सोचिए वो हस्ती जिसने सब कुछ दिया, जब हम उसको पा जाते हैं तो क्या हर चीज हमारी नहीं हो जाती। इस पर ईमान में कमजोरी आए तो समझ लीजिए कि हर चीज खो गई। तो रब से दुआ करना भी एक इबादत है, और वो अजीम इताअत है जो मुश्किल से हासिल होती है। बहुत कम लोगों को ये इबादत मिलती है। जो बंदा अच्छी दुआ कर सकता है वो ना गमगीन होगा ना परेशान, क्योंकि अल्लाह की रस्सी के अलावा सब रस्सियां टूट जाएंगी। इसके अलावा, या कह लीजिए कि इसके दर के अलावा तमाम दरवाजे बंद हैं। वो करीब है और सुनता और देखता है। फैनी करीब वैदा सालकन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बस एक जुमला कह दी, फैनी करीब। बस अगली या पीछे बातें वो खुद ही देख लेंगे। और वो सुनता भी और देखता भी है, और जब मुसीबत ज्यादा इसे पुकारता है तो वो सुनता है जो मालिक वाहिद कवी और गनी है, जो लोग मुख्ताज कमजोर और नातवां हैं। हुक्म है कि वो इससे दुआ करें, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। तुम सबके लिए एक पैगाम है क्या, कि जब कभी तुम्हें कोई आफत पेश आए, मुसीबतों से सामना हो, तो इसका नाम लो, इसे याद करो, इससे मदद नुसरत मांगो, इसकी तकदीस के लिए पेशानी जमीन पर रखो, नाक रगड़ो, ताकि तुम्हें आजादी का एहसास हो, तुम्हें हुर्रियत हकीकी यानी अबूदियत हासिल हो। कहते ना कि अबूदियत में ही हुर्रियत है, यानी एक रब का बनने में ही असल आजादी है। क्योंकि जो एक रब का नहीं बनता वो दर दर पे झुकता है, वो दर दर का बनता है। हाथ बढ़ाओ, हथेलियां फैलाओ, जुबान खोलो और खूब खूब मांगो, इसके दर से चिमट जाओ, इसके लुत्फ व करम के तालिब बन जाओ, इसके नाम का विर्द करो, इससे हुस्ने जन रखो, इसके लिए यकसू हो जाओ सबसे कटकर। सोचिए, वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कटकर इससे जुड़ो ताकि कामयाब हो, कामरान हो जाओ। बहुत कम लोग इस टिप को जानते हैं कि हमारे दुखों और तकलीफों को दूर करने वाली हस्ती अल्लाह ताला है। किसी भी परेशान हाल को अगर ये पैगाम दे सकें तो दे दीजिए, कि अपने आप को दूसरों के सामने रुला कर शर्मिंदा ना करें। देखिए, अक्सर देसी होटलों में और ड्राइवरों के होटलों के बाहर एक चीज लिखी होती है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो, या शर्मिंदा ना करें। यानी आप उधार मांगेंगे तो हम आपको नहीं देंगे, तो आप शर्मिंदा होंगे। बस कह लीजिए, जिंदगी का एक खूबसूरत असूल सीख लिया आज आपने मैंने, किसी को अपना दुख नहीं बताना, किसी को अपनी जरूरत नहीं बतानी। है ना एक हस्ती जिसको बताना भी नहीं पड़ता, उसके साथ जुड़ेंगे आप देखिए, खुद ब खुद वो दूसरों के दिलों में डाल देगा, और आपको अपनी इज्जत और अपनी अना की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस टिप को मामूली ना समझिएगा। लोगों की आदत क्या होती है, एक दफा मांगे, बात करें, बड़े शौक से सुनेंगे, क्योंकि उनको होता है कि अच्छा इनको हमारी जरूरत पड़ी है, अच्छा इनको ये दुख है, इनको ये, चस्के ले लेके सुनेंगे बड़े मजे से। और हो सकता है उसके बाद फिर आपकी मदद भी कर दें थोड़ी सी। एक आध दिन के बाद दोबारा कॉल कीजिए, शायद फिर भी सुन लें। तीसरी कॉल उठाएंगे भी नहीं, और हो सकता है चौथी कॉल से पहले ही कह दीजिए कि मसरूफ बहुत हूं। दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं चाहता कि हर वक्त लोग उससे मांगते रहे। अल्लाह माल बादशाहों का बादशाह, मालिक अल मुल्क, ना मांगने वालों से नाराज होता है। रब को तुम्हारी क्या परवाह पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो, सूरत मोमिनून की आखिरी आयतों में आता है। तो अल्लाह से मांगिए। सूरत नंबर 62 में क्या कहा गया, अम्मै युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहू, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे। और मैं अक्सर जब ये लफ्ज बेकरार पढ़ती हूँ, क्योंकि इस आयत की तफसीर बहुत दफा की कराई है, तो सारे वाक्यात आंखों में घूम जाते हैं जो सुनाए हुए स्टूडेंट्स को। हर दफा कभी कुछ, कभी वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की माँ की बेकरारियां थी, और कहीं वह उम्मे मूसा की बेकरारियां थी, और कहीं कुछ और कहीं कुछ। तो मेरे दिल में आता है कि बेकरार हो और हो भी माँ, और बेकरार हो भी बाप, और बेकरार हो और हो भी अल्लाह का नेक बंदा, اور وہ ہو بے قرار اور محمد رسول اللہ ہو کہ جو بدر کے میدان میں لوگوں کو ان کی جگہوں پہ کھڑا کر کے اللہ کے پاس سے آ کر روتے ہیں. عریش پہ کھڑے آپ کی وہ پکار بڑے نالے یاد کیجئے کہ اللہ یہ 313 بڑی مشکل سے جمع کیے ہیں. اگر آج یہاں کٹ گئے ختم ہو گئے تو اس زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں, خاتم النبیین ہوں. تو یہ بے قراریاں جو آپ میرے اوپر تو اکثر ہی طاری ہوتی ہوں گی, بچہ گھر نہیں آیا بے قرار ہے, شوہر فون نہیں اٹھا رہے تو بے چین ہے, ماں باپ سے رابطہ ٹوٹ گیا, بھائی بہن میں سے کسی کی کو خبر آ گئی, کیا اکثر ہی ہم مضطر نہیں ہوتے. اب دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ضرر, یہاں توئے ڈل گئی ہے تو یہ اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے. تو پھر کیا سیکھنا ہے ہم نے ان باتوں کو سن کر کہ صرف اللہ کو پکاریے جو گمراہوں کو ہدایت دے سکتا ہے, ڈوبتوں کو بچا سکتا ہے, غائب کو لوٹاتا ہے. بچہ گم گیا کئی سال سے, یعقوب علیہ السلام کو ان کا ایک نہیں دو بچے کس نے لوٹائے؟ اس رب کو پکاریے. مظلوم کی مدد وہ کرنے والا, اور یاد رکھیے مظلوم چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں تو یہ مجھے گوارا ہے, لیکن میں اس حالت میں نہیں آنا چاہتا کہ میں ظالم ہوں. تو انسانی تعلقات میں ظلم سے بچیے, کیونکہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں کا ذریعہ بنتا ہے, اور انسان پھر ایسا زیادہ اندھیروں میں پڑتا ہے کہ اس کو خود ہاتھ سے ہاتھ نہ سجائی دے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو مظلوم, صحیح بخاری کا وہ واقعہ یاد کر لیجئے جو ایک کالی مائی کے واقعے کے نام سے معروف ہے. کیسے ایک عورت جو مدینہ کے قریب کی نواحی بستی میں تھی اور کئی سال سے ایک قبیلے کی بڑی ہی خیر خواہ قسم کی لونڈی تھی, اور اسی قبیلے کے سردار کا یا اس کی بیٹی کا ہار گم گیا, اور نہ ہوتے ہوتے بات وہی ہوئی جو آج بھی عموماً ہوتی ہے کہ اس عورت پہ الزام لگ گیا کہ اور کدھر جائے گا, نوکر نہیں لیا ہوگا. آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جب کبھی ان کی کوئی چیز کھو جائے. خیر انہوں نے اس عورت کی تلاشی لی, اس کے جسم کے خفیہ حصوں کی بھی تلاشی لے لی. اس عورت کا دل کھٹا ہو گیا, کہنے لگی اپنی ہی زبان میں, دیکھیے ایتھیسٹ نہ ہو انسان تو اللہ کو پکارتا ضرور ہے, اور وہ بھی پکارتے ہیں جو خود کو ایتھیس کہتے ہیں, او گوش کہہ کے جب جہاز ہلتا نا تو کہتے ہیں او گاڈ او گاڈ. ایک ایسا ہی شخص تھا جو یہ کہتا تھا میں نہیں کسی خدا کو مانتا, لیکن جب جہاز کانپا تو اس نے کہا او گاڈ, تو اس کے ساتھ بیٹھے نے کہا یہ کس کو پکارے تھے, تم تو کہتے ہو گاڈ ہی نہیں, کا پتہ نہیں میرے اندر سے آواز آئی ہے. تو خیر قصہ مختصر, اس نے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے مالک اگر تو ہے نا تو آج مجھے یہاں سے بے گناہی کے ساتھ نکال دے, میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور ایسے ہی ہوا, سب کے بیچ میں آسمان سے ایک چیل یعنی ایگل آئی اور اس نے وہ ہار پھینک دیا جو کہیں وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے جا چکی تھی. سب کے بیچ میں جب گرا تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, شرمسار ہونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے خام خواب پہ شک کیا. تو اس عورت نے کیا کہا, معافی کی ضرورت نہیں, مجھ پہ ایک احسان کر دو, مجھے آزاد کر دو, میرا دل تم سے کھٹا ہو چکا, میں تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی. اور یاد رکھیے جہاں اعتماد اور محبت ٹوٹتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. چونکہ شرمسار تو وہ پہلے سے ہی تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ جو چاہیں کریں, جو لینا لے جائیے اور ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں. اب وہ عورت ہے اور اس کے سر پہ رکھی ہوئی ایک گٹھڑ ہے جس میں اس کی کل کائنات ہے, اور ان چیزوں کو لے لے کے پھر رہی ہے. اتنے میں مدینہ میں داخل ہوتی ہے اور مسجد نبوی تک اس کی رسائی ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی موجود ہے. اس کی کہانی سنی, کہا یہ تو بے سہارا عورت ہے, اپنی ہی ازواج کے ساتھ ہی اس کو مسجد کے کونے میں ایک حجرہ بنا دیا. وہ عورت سارا دن مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی, ہیلپ کرتی, اور جب کبھی وقت فارغ ہوتا تو آپ کے ازواج کے ساتھ بیٹھتی. اور وہ عورت اکثر ایک شعر پڑھا کرتی تھی, عربی کا شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ جو مجھے کفر اور جہالت کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آیا, کیونکہ وہ چند دن ہی کیا رہی ہوگی اس نے مسلمانوں کا رویہ دیکھا اور مسلمان ہو گئی. تو حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں کہ وہ کیا ہار کی چوری تھی تو اس پہ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ نہ وہ ہار کی چوری کا الزام لگتا اور نہ وہ وہاں سے نکلتی, نہ اتنا اچھا ماحول دیکھتی اور نہ اسلام قبول کرتی. تو یاد رکھیے گا اللہ تو مظلوم کی بات سنتا چاہے وہ کفر پہ کیوں نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے. یہ کرونا کے مریضوں کو کون شفا دے سکتا ہے, वही दे सकता है जो बाकी देखी और अनदेखी बीमारियों वालों को शिफा दे सकता है और डूबती कश्तियों को बचाने वाला अल्लाह है। तो लिहाजा सिर्फ अल्लाह अल्लाह से बातें किया करें। सवाल पैदा होता है अल्लाह को कैसे पुकारें। अब ये भी नहीं पता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, फिर हम उसके तरीके पूछते हैं और फिर उस पर सब के लाख के और फतवे और मसले। देखिए ये कोई फिक्र की क्लास नहीं है, ये तो दुखों को दूर करने के तरीके सीखने के लिए बैठे हैं। तो लिखिए अल्लाह को कैसे पुकारें, अल्लाह से बातें करें। कैसे? नमाज पढ़ के, क्योंकि नमाज में आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह की बातें सुने। कैसे? कुरान पढ़ के, क्योंकि बल हुआ कलाम अल्लाह। फिर इस तरह यकीन से दुआ करें, उदुल्लाह वान तुमो किनून बिल इजाबा। अल्लाह को पुकारिए इस सूरत में कि आपको कबूलियत का यकीन हो। फिर इसी तरह अपनी पेशानी जमीन पर रख दें। देखिए कभी आपने अल्लाह को पुकारना सीखना है ना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों से सीखिए, मामा प्लीज प्लीज। कभी इनके लाड होते हैं, कभी मान होता है, और देख रहे हैं कि अम्मा तो वो चॉकलेट देने को तैयार ही नहीं है। फिर फौरन नीचे बैठेंगे, फिर जमीन पे लौटनिया लेंगे, फिर चीखेंगे और आखिर आप अपनी जान छुड़ाने के लिए कहेंगे जाओ दे दो इसको। ऐसे मांगिए, अपने इन मासूम बच्चों से सीखिए। देखिए पेशानी जमीन पे रखना क्या है कि मैं नाक की लकीरें निकाल रहा हूँ। एक दफा वस्जुद वक्त तरीब पे गौर करते हुए अपने दुखों में पुकारिए। आप लोगों के नंबर ढूंढ रहे होते हैं, कॉल नहीं मिल रही, अटेंड नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं आ रहा, क्यों बेचारों को तंग करते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं। रब को पुकारिए, उसके आगे जाके सजदा करके अल्लाह सजदे से सर नहीं उठाना जब तक तू मेरी ये हाजत पूरी ना करते। लोग मंगतों से मांगते हैं, दाता से मांगिए। फिर इसी तरह मदद और नुसरत मांगे, उम्मीद से मांगे, सरगोशियां करें। आपका है वो रब, किसी को क्या लगे। ठीक है हमें अल्लाह के नबी ने वो अदब अदाब सिखाए, वो नमाज के तरीके भी सिखाए, उनसे पीछे नहीं हटना। अल्लाह से मोहब्बत और तसव्वुफ के नाम पे कहीं गलत चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं लाना। खूबसूरत तरीकों से अल्लाह की तरफ चलते रहे, अल्लाह आपकी सुनेगा। और नबियों ने तो मांग मांग के सिखा दिया। जब तकलीफ आती है, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन, कभी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन सिखा दिया गया। और इस तरह कितनी दुआएं हैं, तकरीबन 700 के करीब दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी से ही हमें मिल जाती हैं कि मुख्तलिफ मौके पे अल्लाह से मांगना सिखाया। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत सुनन तिरमिजी में 3381 की हमें मिलती है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो कोई बंदा अल्लाह से दुआ करके मांगता है, अल्लाह इसे या तो इसकी मांगी हुई चीज दे देता है, या इस दुआ के नतीजे में इस दुआ के मिसल इस पर आई हुई मुसीबत दूर कर देता है, जब तक किसने किसी गुनाह या कतः रहमी यानी रिश्ते नाते तोड़ने की दुआ ना की हो। तो क्या ये टिप आपको मुश्किल लग रही है? ना किसी जगह जाने की जरूरत, ना बीच के वसीले, ना ऑफिस खुलने का टाइम का इंतजार, ना अपॉइंटमेंट बनाने का वक्त, ना कोई बीच में क्लर्क, ना कोई अर्दली, ना कुछ। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में अपने रब को पुकारिए। और जब दिल दुखाओ फिर देखिए उस दर को खटखटाइए। हम गलत दरवाजे खटखटाते रहते हैं।